Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Kintrishosi Maheshwara Yadrishosi Mahadeva Tadrishaya Namo Nama Yo Asau Soaham Yajab O Shanti Atharavvedya मांडुक्य उपनिषद को लेकर इन दिनों हम ऋषियों के चिंतन और उनके अनुभव पर आधारित जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति, प्राप्ति के साधन, आने वाली बाधाएं, बाधाओं का निवारण ऋषियों ने बहुत संक्षेप में इशारे मात्र किए हैं, क्योंकि उनका ये दृढ़ विश्वास था और अनुभव भी है कि जीवन क्या है इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको जिया जा सकता है और समझ जीने के बाद आती है। और वो समझ ये आती है कि शब्दों के माध्यम से जिंदगी के गहन रहस्यों को समझा नहीं सकते। शब्द हमें उस परम सत्य के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन उसको समझाने में असमर्थ। सारी साधनाओं का सार तो इतना ही है कि जैसे हम सुबह या रोज यहां आकर बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से ये बात कहते हैं, सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्या। अगर ये बात दिन के समय भी याद रह जाए तो सारी साधनाएं पूरी हो गई। अगर यही बात 24 घंटे दिमाग में रह जाए और ये जीवन का अंग बन जाए तो साधना समाप्त है, साधना का फल ही बाकी रह जाएगा जिसकी आप अनुभूति करें। एक एक शब्द में ऋषियों ने जीवन के गहनतम अनुभूतियों को भर रखा। उनके जितने भी शब्द हैं वो व्यवहार में लाने योग्य हैं। उपनिषद कोई कथाएं नहीं हैं कि जिनको सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो या कोई उत्सव मनाया जाएगा। उपनिषद तो सिद्धांत की ओर इशारा करती है। अगर हर कदम पर यह सावधानी बनी रहे कि सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि भद्रम करणे विश्रुयाम देवा भद्रम पशेम अक्षभिर्यजत्राः, तो सच्ची बात तो यह है कि अगर ये बात मन में बनी रहेगी सारा दिन के सत्यम वदिष्यामि तो आप बोलेंगे ही नहीं। अगर भद्रम पशेम वाली बात होगी तो आंखें बंद ही रहेंगी। भद्रम श्रृणुयाम वाली बात होगी तो एकांत में ही रहेंगे, गपबाजी में नहीं बैठेंगे सुबह से शाम तक, यहां भी ये भी सुना, वो भी सुना, ऐसा भी किया, उधर भी गए, मार्केट में भी गए, टीवी भी सुना, रेडियो भी सुना, गीत भी सुने, ये सब बंद हो जाता है अगर इनमें से कोई एक शब्द भी हम पकड़ लें। और पकड़ने का मतलब होता है, देखो पहली बात होती है इंद्रियां पकड़ती, आंख बिना कुछ मैं आंख खोलूंगा तो दिखलाई देगा जो कुछ भी सामने, तो ये आंख ने पकड़ा। इंद्रियां जो कुछ भी पकड़ेंगी उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि स्थूल को पकड़ा। स्थूल का मतलब होता है पंच भौतिक, स्थूल का मतलब होता है मोटा, मोटे मोटे तौर पर हमने पकड़ा। मेरी आंख ने अगर कुछ देखा, आपकी आंख ने अगर कुछ देखा, तो एक शरीर मात्र को ही देखा, आकार को ही देखा, आकारों के हमने नाम रखे हुए हैं कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक, वो नाम आकार के हैं और हम कह सकते हैं कि मैंने उसको देखा, लेकिन वस्तुतः हमने पंचभूतों को ही देखा, मिट्टी पानी हवा को ही देखा, जिसे हम सोच रहे हैं कि मैंने देखा उसे नहीं देख पाए, क्योंकि उसको देखने के लिए आप रोज अपने आप इन बातों को कहते हो कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। इससे भी आगे ऋषियों ने तीन की जगह भी पांच बना दिए, तो उन्होंने नाम कोश रख लिया कि ये अन्नमय को देखा है, प्राणमय रह गया देखने से, मनोमय रह गया, विज्ञानमय रह गया, आनंदमय रह गया। इससे भी आगे ऋषियों ने सप्त सात में बांट दिया इसी शरीर को ही, और उसके भी नाम उन्होंने ये पांच तो यही के यही हैं, उसके आगे अध्यात्म शरीर और अशरीरी शरीर। तो इस तरह से सात में, कईयों ने फिर सात से चौदह तक भी गए हैं, बुद्ध ने सात के आगे चौदह हिस्से कर दिया आम आदमी को आसानी से समझाने के लिए। तो हम जो भी देखते हैं वो आप स्वयं सोचो कि जब मैंने किसी को देखा तो स्वाय स्थूल के, ना तो उसके सूक्ष्म तक मेरी पहुंच हुई, ना उसके कारण तक मेरी पहुंच हुई। और अगर हम उपनिषदों की भाषा का प्रयोग करें तो केवल अन्नमय तक ही हमारी दौड़ है, मेरी आंखें अन्नमय को देख सकती हैं, लेकिन प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय तो छूट ही गया, उसको देखने का कोई साधन नहीं है, इंद्रियां उसको नहीं देख सकती। इंद्रियां जो भी पकड़ेंगी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कान शब्द को पकड़ते हैं, तो शब्द स्थूल है, शब्द सूक्ष्म नहीं है, शब्द तो स्थूल है। सुनाई पड़े सो शब्द है, समझ पड़े सो अर्थ। अगर इस बात को आप समझ सको जो मैंने कही है, तो हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल पड़ते। जो सुनाई पड़ता है वो शब्द है और शब्द स्थूल है, उसके अर्थ हमें सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। अगर अर्थ समझ में नहीं आए तो स्थूल बस उसका कोई कह नहीं सकते कि क्या हुआ। शोर शराबे में, ऐना मैना डीका में, और साथ में ढोल बजे, ड्रम बजे, तो शब्द तो सुनाई देते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ कुल? जीवन में वो कहां पहुंचाएंगे हमें या कहां हम पहुंच गए। कोई भी जो कुछ भी हम सुनते हैं, गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, भजन संध्याएं होती हैं, भक्ति उसका नाम भी रखते हैं, लेकिन क्या सचमुच में कोई भक्ति का उदय होता है उन सब को सुनने के बाद? अगर तो उसके बाद लोग वृंदावन में भी जाके वो 84 को उसकी यात्रा भी करके आ जाते हैं, लेकिन स्वाय थकावट के, स्वाय स्थूलता के खाना पीना वहां क्या हुआ, रास्ते में कहां कहां रुके, क्या क्या हुआ, ये बातें तो सब रह जाती, लेकिन भक्ति का उदय नहीं होता। और जीवन की सार्थकता भक्ति के उदय में है, यात्राओं में नहीं। तो जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, इसको स्थूल कहते हैं। जब इसको मन में ले जाते हैं, मन से, तो मन में शब्द भी रहता है और उसके अर्थ का चिंतन भी करते हैं। तो इसलिए मन के स्तर पर स्थूल और सूक्ष्म दोनों हो जाते हैं। कहना केवल यही है कि जब इंद्रियों तक हैं तो केवल स्थूलता, इससे हट के जब आप मन की ओर आएंगे तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों बने रहेंगे। शब्द भी सामने, ओम भी सामने लिखा हुआ होगा दीवार पर, और मन भी कहीं चिंतन में लगेगा। जो मैंने सुना वो शब्द भी गूंजते रहेंगे मन में, लेकिन उनके अर्थों का चिंतन भी होगा। तो मन के स्तर पर स्थूलता और सूक्ष्मता बनी रहती। आम आदमी तो केवल इंद्रियों के स्तर पर ही है। थोड़े बहुत आप अपने को सेकंड श्रेणी में हम सब मान लेते हैं, जो इस तरह के सत्संग में, इसमें आना, ये आयोजन करना, हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों के तक है, मन की स्थिति तक आ जाते हैं। शब्द सुनते भी हैं, फिर उनका विचार भी करते हैं, कुछ अच्छा भी लगता है, और दो चार बार कोशिश भी करते हैं कि ऐसा हो जाए। किसी से सुना तो प्राणायाम तो दो चार बार सीढ़ियां उतरते हुए हम वो कर भी लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक दो बार कर लिया। तो इसका अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म दोनों बने हुए। तो मन की बनावट ऐसी है कि इसमें स्थूल और सूक्ष्म रहेंगे। भगवान की फोटो भी आपके मन में आ जाएगी, और फोटो के जो उनके आयुध है उनके अर्थ भी मन में आते चले जाएंगे, कभी स्थूल का कभी सूक्ष्म का। लेकिन अगर उसके अर्थ ठीक तरह से, इसको निष्ठा कहते, अर्थों में जब निष्ठा हो जाए तो बुद्धि में वो शब्द दृढ़ हो जाते, मन से बुद्धि तक चलेगा। बुद्धि में केवल सूक्ष्म ही रहेगा, वहां स्थूल की पहुंच नहीं। मन तक स्थूल की पहुंच है, और मन स्थूल और सूक्ष्म दोनों को लिए रहता है। लेकिन जब वो बुद्धि में पहुंच जाता है तो सूक्ष्म हो जाता है, फिर वो उसमें वो नहीं। और सूक्ष्म ही आपको प्रेरणाएं देता है, उससे पहले कोई प्रेरक नहीं है। प्रेरणा का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको ठीक तरह से एक अच्छे ढंग से गाली दे दी तो काफी है आपको तड़पाने के लिए, बहुत है। मतलब आप कई योजनाएं बनाओगे कि अगर मेरी सारी संपत्ति भी इस कहीं लग के इसको मैं मरवा सकूं तो लोग उसको सुपारी देना कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए में उसको मरवा दी। 5 रुपए में किसी को मित्र बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन 2 करोड़ में मरवाने को तैयार। तो वो गाली का कोई स्वरूप नहीं है, गाली में कोई स्थूलता, कोई शक्ल सूरत कुछ नहीं है, वो सूक्ष्म की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जैसे गाली काम कर जाती है हमारे जैसों के लिए, तुलसी जैसों के लिए एक शब्द ही पत्नी का काम कर जाता है कि जिस अशक्ति से तू इधर आया, अगर उसी अशक्ति से भगवान की तरफ जाता तो कहां हो गई प्रेरणा। ये सूक्ष्म कुछ छू गया तो प्रेरणा होगी। अगर सूक्ष्म हम नहीं पहुंचते, याद रखना पहली सीढ़ी स्थूलता की, इंद्रियों की, हमारा व्यवहार, हमारी पहुंच, हमारी दौड़ इंद्रियों तक ही, आंखों से देखना, कान से सुनना, कुछ खा लेना, कुछ भाग लेना, ताली बजा लेना, नाच लेना, हा हा हो, बात खत्म। ध्यान के क्षणों में, उपासना के क्षणों में हम मन तक पहुंचते हैं तो उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों का एक मिश्रण, एक झलक मिलती। लेकिन व्यवहार इतना प्रबल है, संसार के काम इतने प्रबल हैं कि सूक्ष्म टिकता नहीं, करते चाहते हुए भी फिर स्थूलता में ही आएंगे, क्योंकि व्यवहार में स्थूलता है, बातों में है, उसमें है, अपने काम में लगे हुए कितना भी हम सूक्ष्मता को पकड़ने की कोशिश करें लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने सूक्ष्म पर, अर्थ पर ही गौर किया, वो निष्ठा तक पहुंच गया और बुद्धि में केवल सूक्ष्म ही रह जाता है, स्थूल नहीं। जब बुद्धि से हम उसके अर्थ का, अर्थ का मतलब होता है उसका वाच्य अर्थ, उसका भाव अर्थ, उसका लक्ष्य अर्थ, सभी अर्थों पर जब विचार करते हैं तो करते करते उसके भाव अर्थ पर पहुंच जाते हैं, और भाव अर्थ पर जो ही पहुंचते हैं तो वो चित्त में बात चली जाती, चित्त का मतलब है हमारी चेतना का अंग बन जाती, अब बुद्धि से भी आगे निकल गए। तो चित्त में जाने का अर्थ क्या हुआ? चित्त में जाने का मतलब हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्म हो गए, वो अब हमारी चेतना का ही अंग बन गया, पार्ट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। चेतना का अभिन्न अंग बन जाने का मतलब है कि फिर वो सोते जागते उठते बैठते जैसी चेतना आपको नहीं छोड़ती, वो भाव भी आपको नहीं छोड़ेगा। जो भाव वहां तक पहुंच गया, चित्त में पड़ा हुआ भाव फिर छूटता नहीं। चित्त में देखो हमारे जो चीजें पड़ी हुई हैं वो हमें छोड़ती नहीं, हमारे चित्त में पड़ा हुआ है गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, मेहता जी, ड्रेस वाला, ये वाला, ये चित्त में घुसे हुए। अगर कोई बैठे बैठे ड्रेस वाले को कुछ कह दे तो वो जो भी जिसके नाम के आगे ड्रेस वाला लिखा हुआ है वो तिलमिला उठेगा। क्यों? क्योंकि ये चेतना का अंग बन चुका है, इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है, इसके पीछे कोई शास्त्र नहीं है कि क्यों ड्रेस वाला कोई के साथ कोई चिपक गया, क्यों शर्मा के साथ कोई चिपक गया, कोई क्यों लोहाना के साथ कोई चिपक गया और क्यों वर्धमान के साथ कोई चिपक गया। पार्टियां बनती हैं, दो मिनट में अगर कोई जरा सा भी आप देखो तो ब्राह्मण इधर, क्षत्रिय उधर, लोहाने इधर, महते इधर, एकदम पार्टियां बन जाएंगी, उसमें देर नहीं लगेगी। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि वो चित्त सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर, वो हमारी चेतना का अंग बन चुका है। सुन सुन के, कर कर के, और क्योंकि फिर अपनी अपनी बरादरी में, अपनी अपनी जो हमने बना रखे हैं दायरे, उसमें हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है। कोई जिसमें भी कोई बना रखा हो वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है अग्रवाल हॉस्पिटल है, अग्रवाल उसमें इकट्ठे हो जाएंगे जो सबसे आगे, अगर ये लाला जी अग्रवाल जी, इन्होंने ये बनाया वो बनाया, सारे उनकी प्रशंसा करेंगे। बाहर कम्युनिटी में उनकी कहीं प्रशंसा नहीं है, क्योंकि वही होती है, इसलिए वो उसी से ही चिपकते हैं और व्यवहार चलाने के लिए ये ठीक भी। और कोई जो सरदार है वो गुरुद्वारे में ही उनकी होगा कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, इसलिए वो हमारे चित्त में ही घुस गया कि अग्रवाल कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो हमारी चेतना में परिपक्व हो गया। चित्त में बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि तो कहेगी ये कुछ भी नहीं है, रोज वेदांत सुनते हैं, रोज करते हैं, यहां संसार ही कुछ नहीं है तो उसमें गुप्ता का है। जिसमें ये जीवन, ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड ही मतलब कोई वक्त नहीं रखते, उसमें ये शर्मा क्या और गुप्ता क्या और रोहाना क्या और उदान क्या। लेकिन बुद्धि इसको स्वीकार करे न करे, लेकिन चित्त कहेगा कि नहीं, फिर भी मैं ते ही होते हैं। बस कितना भी आप कर लो, कितना भी आप करो, दूसरा कोई कितनी भी किसी कम्युनिटी में चले जाओ, आपको वो कितना भी सम्मान दें, फिर भी वो उसको लगता है कि नहीं, असली नहीं, ये ऊपर ऊपर से दे रहे हैं, ये मेरे पैसे की वजह से दे रहे हैं, मेरे इसकी वजह से दे। उस पे आत्मीयता का पुट नहीं आ पाता। कारण उसका यही है कि वो चित्त में तो चली गई हुई है बात, लेकिन ना वो बुद्धि में है, ना वो मन में है, ना वो इंद्रियों तक। सफलता हमें उसमें मिलेगी जो इंद्रियों में भी है, फिर मन में गई है, फिर बुद्धि में गई है, फिर चित्त में गई। ये जो क्रम हम कर रहे हैं, क्योंकि ओम एक ऐसा शब्द है जो आपको स्थूलता से सूक्ष्मता में ले जाएगा। आ उ म अमात्र, ये एक क्रम है कि कैसे हम ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं इसी उपनिषद से संबंधित है, कोई ऐसी बात नहीं है जो वो, क्योंकि अंत में हमें इस ओम को पकड़कर सूक्ष्म तक पहुंचना है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म अर्थात उस परम चेतना का अभिन्न अंग बन जाना। चित्त तक तो आपकी चेतना परम चेतना को छूएगी, परम चेतना से एक नहीं होगी, आपकी चेतना परम चेतना को छू लेती है मात्र, उसका स्पर्श करती, और उसके स्पर्श से ही वो कृत्य हो जाती। चेतना जब परम चेतना को छूती है तो जीवन में एक उस तरह का अलौकिक आनंद आना शुरू हो जाता है जो सांसारिक चीजों में नहीं। देखो इंद्रियों का सुख एक अलग बात, वो भी बड़ा आनंद है, आंखों से देखना, खाना, करना, वो, लेकिन मन का सुख जरा उससे थोड़ा और सूक्ष्म भोग है, ये भी भोग ही। इंद्रियों के भोग स्थूल भोग है, मन तक पहुंचे तो सूक्ष्म भोग हो गए, बुद्धि तक आ पहुंचे तो सूक्ष्मतम भोग हो गया, चित्त तक पहुंचे तो सूक्ष्मतम हो गया, है भोग ही। भोग तब तक बने रहेंगे जब चित्त के आगे अहंकार नाम का एक तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक अहंकार का अस्तित्व बना रहेगा तब तक ये भोग और इनकी स्थूलता सूक्ष्मता सूक्ष्म से सूक्ष्म इस तरह की बातें चलती रहें। अंतम बात जो होगी वो अहंकार का बीच में से हट जाना। अहंकार के बीच में हटते ही उसी को अमात्र कह देते हैं, उसी को नाद की शक्ति भी बोल देते हैं, कि उसके बीच में से हटते ही फिर आपकी चेतना और परम चेतना में कोई भेद नहीं रहा, फिर आपकी अपनी चेतना रही ही नहीं, फिर परम चेतना ही काम कर रही। इसलिए जो नानक बोलेंगे, जो कबीर कहेंगे, जो मीरा कहेगी, वो व्यक्तिगत बात नहीं, वो कोई पर्सनल विचार नहीं है किसी के, वो सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, उसमें यूनिटी और यूनिवर्सलिटी दोनों चीजें होंगी, एकत्व एवं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ होता है कि दुनिया का कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जगह का हो, वो उसी की बात है। कहानी मेरी रू दादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्ता मालूम होती, जो भी सुनेगा वो कहेगा जैसे मेरी बात इसने कर दी। अगर मीरा कोई पद कहती है तो सुन के जो हमें चोट लगती है, जो हम उस तरफ झुकते हैं, लगता है कि ये मैंने कहना था जो मैं कह नहीं पाया, ये कह गई मेरी जगह पर, वो अपनी ही बात लगती है। इसीलिए उसको कितनी बार भी सुनो, और कोई बात आप देखो बढ़िया से बढ़िया गीत, ये निशानी होती है इन बातों की कि ये जो आज किसी ने गीत लिखा, कल किसी ने गीत लिखा, आ जा सांवरे चला जा सांवरे ऐसा कर वैसे, वो आप 10 बार नहीं सुन सकते, 11वीं बार आप कैसे बाहर फेंक दो। लेकिन पग बांध घुंघरू मीरा नाची पत्नी कब से आ रहा है, दिन कितनी बार सुना और कितनी बार और सुनो, जब भी सुनोगे इसमें नवीनता ही नजर आएगी, क्योंकि इसके शब्द जो स्थूल थे, जो ही आप इसकी सूक्ष्मता से उसके अर्थों की ओर विचार करोगे तो आपको लगेगा कि ये वो कर गई जो मैं करना चाहता था, जो मेरे से हो नहीं पाया, इसलिए उसने मेरे वाला ही काम किया, इसीलिए वो हमेशा मेरे नजदीक है, हमेशा मेरी अभिव्यक्ति करती है वो, और कुछ भी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करके व्यक्ति को तसल्ली मिलती। जो व्यक्ति दुखी हो वो अपने दुख को अपने दर्द को कहीं कह ले तो वो हल्का हो जाता, क्योंकि हमारे पास वो भाषा नहीं और हमारे पास कुछ वो भी नहीं जिसको सुना सकें हम अपनी बात, और अगर किसी को सुना भी सकते हैं तो सुनकर कोई उसके प्रति हमदर्दी अभिव्यक्त करे ऐसा कोई नहीं, इसलिए हमें घुटन ही घुटन है, क्योंकि कहने कोई शब्द नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं, कोई सुन भी रहा है तो उसको हमारे से हमदर्दी नहीं। ये सारे काम मीरा का एक पद कर जाएगा, कबीर का एक दोहा कर जाएगा, तुलसी की एक चौपाई कर जाएगी, इसलिए हम उनकी चौपाइयों को उनकी क्यों, क्योंकि वो चित्त उनके बीच में से अहंकार हट चुका हुआ है और चित्त चेतना से मिला हुआ है, इसलिए उनकी जो भी बात है वो सार व भौम है, भले ही वो जिनको उनकी भाषा आती है, अब वो भाषा कोई दुनिया में सार्वभौम नहीं है, यही भाषा के साथ सबसे बड़ा उपद्रव कह लो यही है कि भाषा सबकी एक जैसी नहीं, उस भाषा में जो लोग कहेंगे बस उनकी बातें, क्योंकि ये जिन्होंने सार्वभौम बातें कही इनकी बातों का अनुवाद भी दुनिया भर की भाषाओं में हुआ, हर एक की गीतों का अनुवाद नहीं हुआ कि वो फ्रेंच में भी हो वो उसमें भी हो, गीता का जितना अनुवाद हुआ दुनिया की और जुबानों में ये बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर श्रीमद् भगवत गीता है। तो इस तरह से ये जो अनुवाद होते हैं वो इसलिए कि ये सार्वभौम बात है, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए, वो भी इसको अपना ही मानते हैं, वो भी कहते हैं ये हमारी बात। तो मुख्य बात क्या हुई कि जिस विषय को लेकर हम चले हैं, सच पूछो तो ये साधना के सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय, ओम कोई स्थूल बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है जो सुना दिया जाए तो आपका वो बने, इसका संबंध साधना से है, इसका संबंध जीवन से है, इसलिए इसको समझा पाना भी कठिन है और समझना भी कठिन है, दोनों ही काम ऐसे। तो क्योंकि इस उपनिषद में इसी की चर्चा है, इसलिए आपको प्रसंगवश ये बात सुना दी कि हमारा ये जो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, इंद्रियों से परम चेतन से जा मिलना, ये इसलिए बात कही है कि ध्यान रहे कि अगर सचमुच में किसी के मन में वहां पहुंचने की बात है तो पवित्रता इंद्रियों से ही शुरू होगी, सबसे पहली सीढ़ी तो इंद्रियां ही,